शक्तिभ्यः
ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, आज के अविक्षिण ज्ञानोपयोग भावना की। नश्वर काया में रहने वाला चेतन आत्मा, नश्वर काया को नश्वर समझने के लिए थोड़ा बहुत तो ज्ञान का अभ्यास उसे करना पड़ता है, क्योंकि वह भीतरी आत्मा चेतन है। चैतन्य आत्मा अपनी चेतना की महिमा को जब तक नहीं समझता, तब तक यह परमात्मा नहीं बन सकता। चेतना चेतना को समझे यह परम आवश्यक होता है। शरीर में ज्ञान नहीं होता, क्योंकि शरीर अचेतन होता है। शरीर अचेतन है, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी शरीर के भीतर चैतन्य द्रव्य की आवश्यकता होती है, और वह चैतन्य द्रव्य हम सबके शरीर में विद्यमान है, और उस द्रव्य के भीतर चेतनता क्या है, इस संबंध में यदि आप विचार करते हैं तो आज के ज्ञानोपयोग भावना का याद आना स्वाभाविक हो जाएगा। कौन सी भावना है आज? अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना। दो शब्द जुड़े हैं इस भावना के साथ, अभीक्षण और ज्ञानोपयोग। भावना तो है ही, अभीक्षण का क्या अर्थ होता है सर्वप्रथम इससे हम समझेंगे। अभीक्षण यानी निरंतर धारावाहिक रूप से, क्रमिक रूप से, अखंडित, खंडित न होते हुए अखंड रूप से अपना उपयोग अपने में रमे, अपने में ठहरे, अपने को जाने, अपने को पहचाने, और अपने को पहचान कर अपने ही आराधना करे, यह आवश्यक एक भव्यात्मा को होता है। और इस आवश्यकता की पूर्ति जब भव्यात्मा के माध्यम से हो जाता है, तो एक भव्यात्मा को परमात्मा बनाने में, बनने में समय नहीं लग सकता। आवश्यक इस बात की है कि अपन ज्ञानोपयोग भावना को भाते भाते अपनी ज्ञान की महिमा को प्रकट करे अपने जीवन में। कैसा है वह ज्ञान इस नश्वर काया में विद्यमान वह आत्मा सतत ज्ञानोपयोग से प्रवाहित है। इस प्रवाह को किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। जिस प्रकार आकाश से वर्षा निरंतर होती है तो जब तक वर्षा निरंतर होती है तो उसको हम निरंतर वर्षा कहते हैं। वर्षा बंद हो जाए तो वर्षा बंद हो जाती है, फिर वर्षा निरंतर नहीं रहती, ये भी हम समझते हैं। लेकिन वर्षा की तरह निरंतर बरसने वाला यदि कोई भीतर है तो वह ज्ञान ही तो है। ज्ञान की महिमा को समझना जानना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। वह ज्ञान कहां होता है इसको भी पता लगाना चाहिए। आत्मा कहां है यह भी पता लगाना चाहिए। कहां है आत्मा? आजू बाजू में है? नहीं। कहां है वह आत्मा? शरीर में है, इसी काया में है। और वह काया में रहते रहते कितने वर्ष व्यतीत किया है? जब हमने जन्म लिया तो जन्म लेते समय इस काया को पाने के लिए अकेले आए थे। पीछे का परिवार, पीछे का कोई संबंध अपने साथ आता नहीं है, और हम अकेले आए थे। और अकेले आकर के इस काया को प्राप्त किया था। पुरानी काया को त्याग करके नवीन काया में प्रवेश किया था, और प्रवेश करने के बाद भी हम अकेले ही आज तक हैं। इस काया के भीतर कोई आ नहीं सकता। एक जीव काया के आश्रय से रह सकता है, लेकिन काया के आश्रय से जो पहली बार आया है वह भीतर रहता है, उसके पास तक कोई भी जा नहीं सकता, क्योंकि वह हमेशा हमेशा अकेला जीवन जीना जीता है। जीवन जीता है, अकेला जीता है, पर अकेला जीता जीता कभी दूसरे को साथी नहीं बनाता, अपने में लेता नहीं, बाहर से ही संबंधों को प्राप्त करता है। आज अभिक्षिण ज्ञानोपयोग की भावना से आप लोगों ने तीर्थंकर प्रकृति के बंध की भावना भाई है, पर यह भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी भावनाओं में अभिक्षिण ज्ञानोपयोग की भावना महत्वपूर्ण भावना है। अभिक्षिण अर्थात निरंतर। आत्मा के भीतर जो ज्ञान का प्रवाह है वो कभी रुकता नहीं है। कभी एक सेकंड के लिए भी यह रुका नहीं है, रुक नहीं सकता। ये निरंतर रूप से प्रवाहित रहता है, निरंतर कुछ न कुछ जानता रहता है, पहचानता रहता है, विचार करता रहता है। इन विचारों में खोया हुआ उपयोग होता है। इस उपयोग को जिनेंद्र भगवान ने तीन प्रकार का बताया है। ज्ञानोपयोग तीन प्रकार का है। ये तीन प्रकार का उपयोग शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है। इसका नाम ज्ञानोपयोग है और त्रिविध है। पहला इसका नाम है अशुभोपयोग, दूसरा नाम है शुभोपयोग, और तीसरा नाम है शुद्धोपयोग। तीन प्रकार का यह उपयोग है। इस समय में अपने पास कौन सा उपयोग है यह जान लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम अशुभोपयोग में जी रहे हैं या शुभोपयोग में जी रहे हैं या शुद्धोपयोग में जी रहे हैं, किस उपयोग के साथ हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है यह जानना पहचानना बहुत आवश्यक है। पहचानेंगे, पहचान लो। अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, जो आत्मा अशुभोपयोग के साथ रहता है वह निरंतर रहता है, पर अशुभोपयोग को त्याग करने की भावना से जब वह भावना भाने लगता है कि मुझे अशुभोपयोग का त्याग करना है और शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की आराधना करना है, उसकी साधना करना है, तो अशुभोपयोग को त्यागने के लिए भी उपयोग को जागृत होना पड़ता है। इस उपयोग का उपयोग सही दिशा में ना हो तो उपयोग का दुरुपयोग भी हो सकता है, और अनादिकाल से इस आत्मा के द्वारा इसी उपयोग का दुरुपयोग हुआ है, इसलिए आत्मा का कल्याण नहीं हो पाया। अपने को कल्याण करना है कि नहीं, आत्मा का कल्याण करना है क्या अकल्याण करना है? कल्याण करना है। यदि कल्याण करना है तो अशुभोपयोग को त्यागना है, यह लक्ष्य बनाना भी परम आवश्यक होता है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान कहते हैं जीव का कल्याण दो उपयोगों के द्वारा ही होना संभव है। कौन कौन से दो उपयोग? शुभोपयोग से आत्मा का कल्याण संभव है और शुद्धोपयोग से आत्मा का कल्याण संभव है, परंतु शुद्धोपयोग के माध्यम से जो आत्मा का कल्याण होता है वह कल्याण गृहस्थ अवस्था में संभव नहीं है, यह बात भी ध्यान में रखना है। शुद्धोपयोग को पाने के लिए अपने जीवन में से सब कुछ विकारों को दूर करना पड़ता है, हमारे साथ जितने भी संबंध हैं उन संबंधों को तोड़ करके आत्मा को स्वतंत्र बनाना पड़ता है। आत्मा का जीवन जब तक स्वतंत्र नहीं होता तब तक शुद्धोपयोग का आराधक वह आत्मा नहीं बन सकता। शुद्धोपयोग एक बहुत बड़ी चीज होती है, यह इतनी सस्ती वस्तु नहीं है जो कि जिस किसी गुणस्थान में उपलब्ध हो जाए। कई लोग चर्चा करते हैं यह शुद्धोपयोग पहले गुणस्थान में भी हो जाता है, दूसरे गुणस्थान में भी हो जाता है, तीसरे गुणस्थान में भी हो जाता है, चौथे पांचवे में भी हो जाता है, यानी जब कभी भी यह शुद्धोपयोग होता है। यहां शुद्धोपयोग का अर्थ वे लोग ये समझते होंगे जो ऐसा सोचते हैं कि शुद्धोपयोग जहां कहीं भी होता है, ये समझते होंगे कि धर्म की आराधना करते समय, पूजा अनुष्ठान करते समय, स्वाध्याय करते समय, सामायिक के लिए जब हम बैठ जाते हैं तो उस समय में भी विशुद्धि बढ़ती है। उस विशुद्धि के काल में जो आत्मा के परिणामों में विशुद्धि आने से उज्ज्वलता आती है, यह उज्ज्वलता ही शुद्ध उपयोग है और वही शुद्धोपयोग है। किंतु शुद्धोपयोग की परिभाषा ये नहीं है। जिनेंद्र भगवान ने कहा शुद्धोपयोग का अर्थ होता है जहां पर अशुभोपयोग और शुभोपयोग दोनों का अभाव है वहां शुद्धोपयोग पाया जाता है, और जहां पर शुद्धोपयोग नहीं पाया जाता वहां पर केवल ज्ञानोपयोग पाया जाता है। ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश है छद्मस्थ अवस्था में, यानी सांसारिक अवस्था में। सांसारिक जीवों में जो उपयोग के भेद किए गए हैं वे तीन प्रकार के हैं, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। इन तीनों उपयोगों से यदि आत्मा परे हो जाए तो अरहंत अवस्था को प्राप्त करके वह केवल ज्ञानोपयोगी हो जाता है, और उसी केवल ज्ञानोपयोग को पाने के लिए शुद्धोपयोग साक्षात केवल ज्ञानोपयोग का कारण होने से शुद्धोपयोग की आराधना करना प्रत्येक भव्यात्मा के लिए अनिवार्य है। भगवान के पास जो ज्ञान है ना, वह ज्ञान वह भी उपयोग वाला ही ज्ञान है, किंतु वह तीन प्रकार वाला नहीं होता। हमारा उपयोग तीन प्रकार की धारा में बह सकता है, हमारा उपयोग तीन दिशा में बह सकता है, परंतु भगवान का अरिहंत भगवान का और सिद्ध भगवान का जो उपयोग है वह उपयोग उसको क्या नाम देंगे, शुद्धोपयोग नहीं। वहां शुद्धाशुद्ध का सवाल ही नहीं है। शुद्धाशुद्ध से जो परे हो चुके हैं, जिनका उपयोग तीनों उपयोगों से उठ चुका है, वह केवल नाम पाता है। केवल ज्ञान यानी केवल ज्ञान ही ज्ञान है और वह उपयोग ज्ञान में रमा हुआ उपयोग होता है। उसमें न अशुद्ध की उत्पत्ति होती है न शुद्ध की उत्पत्ति होती है। ज्ञान अपने स्वभाव में आया हुआ होता है और अपने स्वभाव की अनुभूति निरंतर रूप से करता है। शुद्धोपयोग छूट भी सकता है किंतु ज्ञानोपयोग कभी छूट नहीं सकता। शुभोपयोग छूट भी सकता है किंतु केवल ज्ञानोपयोग शुभोपयोग की तरह और शुद्धोपयोग की तरह कभी छूट करके नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए उस ज्ञानोपयोग को प्राप्त करने के लिए जिनेंद्र भगवान कहते हैं, सर्वप्रथम अशुभोपयोग का त्याग करो और शुभोपयोग की आराधना में लग जाओ और शुभोपयोग की आराधना करते करते शुद्धोपयोग को प्राप्त करके फिर केवल ज्ञानोपयोग की आराधना करने के भूमिका में पहुंच जाओ और भूमिका में पहुंच करके उसी केवल ज्ञानोपयोग को नाश करने के योग्य जो कर्म हैं उन कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञानोपयोगी बन जाओ। ये उपदेश जिनेंद्र भगवान देते हैं। अशुभोपयोग क्या है? अशुभ यानी जो उपयोग मिथ्यात्व में लगा हुआ है, मिथ्यात्व अशुभ है। मिथ्यात्व में लगा हुआ उपयोग अशुभ कर्मों का बंद करता है। अपने को कौन से कर्मों का बंद करना चाहिए, शुभ कर्मों का या अशुभ कर्मों का? हाँ, अशुभोपयोग के काल में दोनों प्रकार के कर्मों का बंद अवश्य हो सकता है, किंतु कुछ कर्म जो अशुभ हैं उन अशुभ कर्मों का उपशमन करने के लिए यानी दबाने के लिए, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए यदि आप प्रयास करेंगे तो ही शुभोपयोग की उपलब्धि हो सकती है। शुभोपयोगी बनना है तो अशुभोपयोग को दबाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, उस धारा को मोड़ना पड़ेगा। अशुभोपयोग से परे होने पर ही शुभोपयोग अपने पास आ सकता है। एक समय में दो उपयोग एक साथ रह नहीं सकते। जिस समय आत्मा अशुभ रहेगा, अशुभ उपयोग वाला रहेगा, उस समय शुभ उपयोग वाला रह नहीं सकता। जिस समय शुद्ध उपयोग वाला रहेगा उस समय शुभ उपयोग वाला और अशुभ उपयोग वाला नहीं रह सकता। यही कारण है कि शुभोपयोग के काल में शुद्धोपयोग नहीं होता और अशुभोपयोग के काल में शुभोपयोग और शुद्धोपयोग नहीं रहता। अशुभोपयोग के काल में आत्मा अशुभोपयोगी रहता है और निरंतर वह पहले गुणस्थान से, कल कहा था ना, पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान तक अशुभोपयोग होता है। तो पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान तक निरंतर अशुभोपयोग की ही अनुभूति करता है। जब तक ये गुणस्थान परिवर्तित नहीं होते तब तक उपयोग में भी परिवर्तन होना संभव नहीं है। तीसरे गुणस्थान से ऊपर उठा हुआ जीव यदि चौथे में प्रवेश करता है तो सम्यक्त्व के साथ प्रवेश करता है और सम्यक्त्व के साथ प्रवेश करने वाला जीवात्मा सर्वप्रथम अशुभोपयोग को त्याग करते समय उसके साथ साथ मिथ्यात्व का भी त्याग करता है। मिथ्यात्व का संबंध अशुभोपयोग से है और सम्यक्त्व का संबंध शुभोपयोग से है। शुभोपयोग सम्यक्त्व को जन्म देता है और अशुभोपयोग जीव को मिथ्यात्व का जन्म देता है, या यूं कहे मिथ्यात्व को भी जन्म दे सकता है और मिथ्यात्व की ओर ले जाने वाली कषाय को भी जन्म दे सकता है। कषाय चार प्रकार की होती है, मालूम है ना? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, चार प्रकार की कषाय हैं। आप बताइए चार प्रकार की इन कषायों में से सम्यक्तों का घातक कषाय कौन सी है? अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी कषाय का नाम अनंतानुबंधी इसलिए है, वैसे तो मिथ्यात्व का नाम अनंत है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव जब तक मिथ्यात्व अवस्था में रहता है तब तक अनंत काल तक वह संसार में ही परिभ्रमण करता है, इसलिए मिथ्यात्व का नाम अनंत है। अनंतम अनंतरूपम मिथ्यात्वम बदनाथी, यानी उसको बांधने वाला कौन सी कषाय? अनंतानुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी कषाय जीव को मिथ्यात्व की ओर ले जाकर मिथ्यात्वी बना देता है। तो यह कषाय मिथ्यात्वी बनाता है कि और कौन है, इस बात को भी समझना आवश्यक है। कषाय तो कषाय है, कषाय हमको किस प्रकार से मिथ्यात्व की ओर ले जा सकता है? किंतु कषाय नहीं, किंतु कषाय करने वाला जो ज्ञानोपयोग है, वह ज्ञानोपयोग वस्तुतः विपरीत रास्ते पर स्वयं जब जाता है तब अनंतानुबंधी कषाय उस ज्ञानोपयोग के साथ हो जाता है, तो वह ज्ञानोपयोग कषाय को साथ ले जाकर मिथ्यात्व में जाकर के ढल जाता है। समझ में आ रही है ना बात? बड़ी बात है। ज्ञान बहुत विचित्र है, इसलिए ये कहना चाहिए ज्ञान के संबंध में ज्ञान ही दुख का मूल है। आचार्य श्री ने दो पद्य लिखा है, समय सार ग्रंथ का अनुवाद करते समय उसके उपसंहार में किसी अधिकार में ये दो दोहे आते हैं, उपसंहार के दोहे हैं ये। ज्ञान किस प्रकार से जीव को हिताहित करता है, इस बात को समझने पर जीवात्मा का कल्याण होने में देर नहीं लग सकती। सिर्फ एक बात को समझने की चेष्टा हमें करनी चाहिए। किसको समझना है? अपने ज्ञान को ही समझना है। ज्ञान ही सब कुछ गड़बड़ करता है, ज्ञानोपयोग ही गड़बड़ का मामला है। उस दोहे में आचार्य श्री कहते हैं कि ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल। क्या बताते हैं? ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का यानी संसार का, भव का कूल, कूल यानी तट, संसार का तट तक पहुंचने वाला भी, समाप्त करने वाला भी, संसार को समाप्त करके अपने आप का हित करने वाला भी ज्ञान ही है। ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। क्या बताया? बहुत बड़ी चीज बता दी। ज्ञान दुख का मूल है और ज्ञान ही सुख का कूल, सुख भी ज्ञान से मिलता है और दुख भी ज्ञान से मिलता है। संसार में रमने वाला ज्ञानोपयोग दुख का कारण बनता है और संसार से परे होने की चेष्टा करने वाला ज्ञानोपयोग वह सुख का कारण बनता है। कौन सा ज्ञान हमको सुखी करता है? तो कहते हैं अशुभोपयोग से हट करके शुभोपयोग की आराधना करने वाला ज्ञान हमको सुख के रास्ते पर पहले ले जाता है। फिर सुखी कैसे बनाता है? जब वह शुद्धोपयोग में ले जाकर के अपने आप को ठहरा देगा, तो वही ज्ञान शुद्धोपयोग के माध्यम से अपने आप की सुख की अनुभूति करने में सहयोग करेगा। ज्ञान ही सहयोग करता है सब जगह। आप विपरीत रास्ता से चल करके यदि दुखी बनना चाहते हैं तो उसमें भी ज्ञान कारण है, और सही रास्ते से चल करके सुखी बनना चाहते हैं तो उसमें भी ज्ञान ही कारण है। ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है। हमारे लिए प्रतिकूल ज्ञान कौन सा है? राग सहित वाला, यानी कषाय रहित वाला। राग, राग यानी मराठी में होता है क्रोध, मराठी में क्रोध है ना, राग का अर्थ। राग आलो, राग यानी क्रोध होता है। राग करू नका यानी क्रोध मत करो। किंतु यहाँ ये जो राग शब्द है हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में और प्राकृत भाषा में भी राग का अर्थ होता है लोभ या माया। राग में दो कषायें समाहित होती हैं, एक कषाय लोभ कषाय है और एक माया कषाय है। इन दोनों कषायों को समाहित हम लोभ में कर सकते हैं, इसमें राग में कर सकते हैं। राग दुख का मूल है। कर्मों का जो बंध होता है वह राग के बिना नहीं होता। संसार जीव पाप पुण्य इत्यादि कर्मों का जो बंध करता है वो राग से ही करता है। पुण्य का बंध भी राग से होता है और पाप का बंध भी राग से होता है। जब हम शुभ परिणामों से रहते हैं तो हमारा ज्ञानोपयोग शुभ परिणामों के द्वारा पुण्याश्रव करके पुण्य बंध करता है, और पापाश्रव कब करता है? जब अशुभ राग, अशुभ कषाय, अप्रशस्त कषाय के द्वारा जब ज्ञानोपयोग प्रवृत्त हो जाता है तो उस वक्त वह अशुभ कर्मों का आश्रव करके अशुभ कर्मों का बंध करता है। बंध और आश्रव से बचने के लिए, अशुभ अशुभ कर्मों के बंध से बचना चाहते हैं तो अपने उपयोग को कंट्रोल करना पड़ेगा। इस उपयोग का सदुपयोग करने की कला सीखनी पड़ेगी। इस उपयोग का दुरुपयोग न करें इसके लिए सावधानी रखनी पड़ेगी। यदि हम पूर्णतः सावधान हो जाएं तो फिर हमारा ज्ञानोपयोग सुधर जाएगा, और जिस दिन ज्ञानोपयोग सुधर जाएगा उस दिन से हमारा जीवन रूपांतरित होगा, सन्मार्ग के रूप में रूपांतरित होकर के कल्याण के रास्ते पर आएगा। समय खिसक गया है, 10:30 बज गया। समझो विषय क्या है। आप लोगों ने आज अभिक्षिण ज्ञानोपयोग के बारे में पूजन करके ये भावना भाई है कि यह अभिक्षिण ज्ञानोपयोग हमारे लिए कल्याणकारी बने, परंतु ज्ञानोपयोग अभिक्षिण बनाने के लिए निरंतर स्वाध्याय करना पड़ेगा। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, स्वाध्याय के 5 भेद जिनेन्द्र भगवान ने बताया है। शास्त्र का स्वाध्याय हमें निरंतर करना चाहिए, उसमें अभिक्षिणता चाहिए। शास्त्र को निरंतर पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़ता जाएगा। फिर शास्त्र को पढ़ने के बाद प्रश्न, क्या पढ़ा, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, जो समझ में नहीं आया उसको पूछना भी चाहिए। ये प्रश्न स्वाध्याय है। फिर ऐसे 5 स्टेज हैं स्वाध्याय करने के, 5 विधियां हैं। इन विधियों को अपना करके यदि आप स्वाध्याय करेंगे तो निरंतर अभिक्षिण ज्ञानोपयोगी आप बन सकते हैं। तीर्थंकर प्रकृति के बंध में इसको भी कारण के रूप में स्वीकार किया है। यह भावना भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणीभूत है। इस भावना की विशेषता अलग ही है, क्योंकि आत्मा के भीतर जितनी भी विशेषताएं हैं, बहुत अनंत विशेषताएं हैं, अनंत गुणधर्म है आत्मा के भीतर, लेकिन एक गुणधर्म ऐसा है जिसको हम ज्ञान कहते हैं। ज्ञान जानता है और देखता है, दर्शन गुण के माध्यम से आत्मा देखता है, ज्ञान गुण के माध्यम से आत्मा जानता है। दर्शन गुण और ज्ञान गुण में से ज्ञान गुण की महत्ता बहुत अधिक है, क्योंकि दर्शन गुण इतना हानिकारक हमारे लिए नहीं है। देखना राग द्वेष के बिना होता है, लेकिन देखने के पश्चात राग द्वेष करने वाला, हर्ष विषाद करने वाला, कर्मों को बंद करने वाला, उनके फल को भोगने वाला, भोगने के लिए चतुर्गति में भ्रमण करने वाला यदि कोई होता है, उसमें कारण कोई होता है, तो वह ज्ञान ही होता है। इस ज्ञान को संभालेंगे, राग द्वेष से परे होंगे, तो निश्चित रूप से यह ज्ञानोपयोग का सदुपयोग होकर हमारे लिए शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो करके केवल ज्ञानोपयोगी हम बन सकते हैं। केवल ज्ञानोपयोगी बने बिना हम अरहंत पद को पा नहीं सकते। मोक्ष मार्ग में तीन प्रकार के उपयोग में से एक उपयोग को हेय बताया है और दो प्रकार के उपयोग को उपादेय बताया है। शुभोपयोग भी उपादेय है, जब तक हम शुद्धोपयोग तक नहीं पहुँचते, उसकी आराधना नहीं करते। शुद्धोपयोग की आराधना करने वाले जीव को नियम से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। गृहस्थ अवस्था में शुद्धोपयोग नहीं होता है, क्योंकि शुद्धोपयोग हो जाए तो गृहस्थ अवस्था में केवल ज्ञान की उत्पत्ति को भी मानने में कोई आपत्ति नहीं आती। कहाँ आती है? नहीं आती है ना। शुद्धोपयोग को गृहस्थ अवस्था में मानेंगे तो केवल ज्ञान उसका कार्य है, शुद्धोपयोग कारण है और केवल ज्ञानोपयोग कार्य है। तो गृहस्थ अवस्था में केवल ज्ञान को यदि मानेंगे तो मानो बहुत अच्छी बात है, गृहस्थ को केवल ज्ञान हो जाए तो इतनी सस्ती बात क्या हो जाएगी। फिर गृहस्थ अरहंत परमात्मा बन सकता है, वस्त्रधारी अरहंत परमात्मा बन सकता है, ऐसा त्रिकाल में भी नहीं हो सकता। अब समझ में आ रहा है, ऐसा त्रिकाल में भी नहीं हो सकता, क्योंकि वस्त्र आवरण जहां होता है वहां पर निश्चित रूप से पाप होता है। वस्त्र पाप का त्याग के बिना, क्योंकि ये पाप परिग्रह है ना, वस्त्र भी परिग्रह है, परिग्रह पाप है। ये पाप जब तक त्याग नहीं होता तब तक दिगंबर अवस्था प्रकट नहीं होती, और जब तक दिगंबर अवस्था प्रकट नहीं होती तब तक शुद्धोपयोग आपके पास नहीं आ सकता। शुद्धोपयोग कहता है मैं जहां पाप है वहां स्पर्श नहीं करता, मैं सोले में हूं, मैं उसको स्पर्श नहीं करता जिसके पास पाप है। शुभोपयोग स्पर्श कर सकता है, अशुभोपयोग वस्त्रधारी को स्पर्श कर सकता है, लेकिन शुद्धोपयोग कहता है मैं सोले में रहता हूँ, मैं उनका स्पर्श नहीं करता जहाँ जीवात्मा वस्त्रधारी है, वस्त्र परिग्रह को धारण करता है, उसके पास नहीं आ सकता। इसलिए शुद्धोपयोग कहता है मैं सदा मुनियों के पास रहता हूँ और मुनि मेरे साथ रहते हैं, मुनि महाराज मेरी आराधना करते करते मेरे साथ मित्रता स्थापित करके वे केवल ज्ञान के प्रसाद को पाते हैं। इसलिए मैं मुनियों पर ही अनुकंपा कर सकता हूँ और मुनि भी शुद्धोपयोग के अनुकंपा स्वयं पर करके केवल ज्ञानोपयोग प्राप्त करके अरहंत परमात्मा बनते हैं। शुभोपयोगी चौथे गुणस्थान से सप्तम गुणस्थान तक के मुनि भी होते हैं, लेकिन शुद्धोपयोगी मुनि वस्तुतः केवल ज्ञान प्राप्ति के योग्य मुनि कहलाते हैं। शेष कथन हाँ, ज्ञानोपयोग को अशुभोपयोग की संगति छोड़ना चाहिए। अशुभोपयोग की संगति छूट गई तो मिथ्यात्व की संगति ऑटोमेटिक छूट जाती है, और उस कषाय की संगति भी छूट जाती है जो कषाय अनंतानुबंधी कहलाती है। इन दोनों की संगति छूटने पर, तीनों की, अशुभोपयोग, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, इन तीनों की संगति छूटने पर चतुर्थ गुण स्थान की उपलब्धि होने पर शुभोपयोग की आराधना प्रारंभ होती है और इसी शुभोपयोग के द्वारा वह आगे बढ़ता है, महावर्ती मुनि बनता है। तो शुद्धोपयोग के प्रसाद से केवल ज्ञान के प्रसाद को पाता है और अरहंत परमात्मा बनता है। अरहंत परमात्मा बन करके आघाती कर्मों को भी नष्ट कर फिर बाद में शुद्ध परमात्मा बनता है। शुद्ध परमात्मा और अरहंत परमात्मा केवल ज्ञानोपयोगी होते हैं और गृहस्थ जो सम्यक दृष्टि नहीं होते वे अशुभोपयोगी होते हैं। जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो शुभोपयोगी होते हैं। मुनि जो शुद्धोपयोगी नहीं होते हैं वो शुभोपयोगी ही रहते हैं। शुभोपयोग को छोड़ करके मुनि को अन्य कोई उपयोग नहीं हो सकता, परंतु गृहस्थ में दोनों उपयोग हो सकते हैं, अशुभोपयोग और शुभोपयोग। हाँ, जिसको हम मुनि कहते हैं उनके पास तो दो ही उपयोग हो सकते हैं। ये बात अलग है कि गुणस्थान का पतन होने के बाद द्रव्य व्रतों के साथ अशुभोपयोग में भी आ सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। परंतु जो मुनि कहते हैं, जिसको द्रव्य व्रत और भावव्रत का पालन जिनके पास होता है, वो दो उपयोग के ही स्वामित्व को धारण करने वाले होते हैं। दो उपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। ऐसे मुनि महाराज और ऐसे गृहस्थ जो अशुभोपयोग से बचते हैं, वे अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के भीतर नियम से निर्वाण को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। शुभोपयोग के साथ सम्यक्त्व का अविनाभाव है और शुद्धोपयोग के साथ वीतराग सम्यक्त्व का अविनाभाव है। जहां जहां शुद्धोपयोग रहता है वहां वहां वीतराग सम्यक्त्व रहता है, और शुभोपयोग के साथ सराग सम्यक्त्व का अविनाभाव होता है और अशुभोपयोग के साथ मिथ्यात्व का अविनाभाव होता है। ये समझ करके हमें अविक्षण ज्ञानोपयोगी बनकर तीर्थंकर प्रकृति में बंध के कारणीभूत इस अविक्षण ज्ञानोपयोग की आराधना पूजा अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। इसी संस्कार के माध्यम से हम कभी न कभी भावी भवों में विदेह क्षेत्र आदि में जन्म लेकर तीर्थंकर प्रकृति को साक्षात बंद करके तीर्थंकर बनकर मोक्ष जा सकते हैं। ऐसा जाने का अवसर सबको मिले, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।